गाथा में आप सुन रहे हैं एरोनिका पार्कर जोन्स की लिखी कहानी साजिशबाज औरत। लीजिए सुनिए कहानी का पांचवा और अंतिम भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना एलिजाबेथ पीटर से मिलकर उसे उस हादसे को भुला देने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि ऐसा करने के लिए रेमंड उसे अच्छी खासी रकम देगा। एलिजाबेथ पीटर को रेमंड से मुलाकात करने के लिए रात 8 बजे एक होटल में जाने के लिए कहती है और खुद रेमंड के पास $25,000 लेकर जाती है। उधर सुबह सुबह वॉल्टर को फोन पर पता चलता है कि हेजल के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है और पुलिस को रेमंड के पास से $25,000 मिले हैं। अब आगे एलिजाबेथ का कॉफी वाला हाथ बहुत जोर से कांपा। अगर हेजल की सूचना सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेमंड ने कल रात पीटर को $10,000 अदा नहीं की बल्कि पूरे $25,000 लेकर फरार हो रहा था, मगर हादसे में मारा गया। अब मुझे नए सिरे से पीटर के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। मुमकिन है कि पीटर इस वादा खिलाफी की वजह से गुस्से में हो और ज्यादा रकम की मांग करे। हम दोनों तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं, मिस्टर वॉल्टर ने कहा। तुम्हारा बॉस होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम अपनी पसंद से अपने पति की कब्र पर चढ़ाने के लिए फूलों की एक चादर को ऑर्डर दे दो। उसकी जरूरत नहीं है सर, हेजल ने कहा। अलबत्ता पीटर की मां के पास एक गुलदस्ता भेजा जा सकता है। आपको मालूम हो गया होगा कि कल रात किसी ने गरीब पीटर को चाकू मारकर कत्ल कर दिया है। कॉफी का कप एलिजाबेथ के हाथ में इतने जोर से कांपा कि बहुत सारी कॉफी छलक कर उसके कपड़ों पर गिर गई। क्या कहा? पीटर को? तुम्हारा मतलब है कि हमारे प्यून पीटर को पिछली रात किसी ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया? मिस्टर वॉल्टर ने हैरत से पूछा। जी हाँ मिस्टर वॉल्टर, आज के तमाम अखबारों में यह खबर छपी हुई है। शायद आपने अभी तक सुबह का अखबार नहीं पढ़ा, हेजल ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें पीटर की मौत का जिक्र यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, एलिजाबेथ ने तेज आवाज में कहा। हम सब जानते हैं कि पीटर का कातिल कौन हो सकता है। मैं समझी नहीं मैडम, हेजल ने बड़ी मासूमियत से कहा। एलिजाबेथ का दिल चाहा कि वो उस हर्राफा के मुंह पर कॉफी का कप दे मारे। पीटर का कातिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति ही हो सकता है, एलिजाबेथ ने तीखे लहजे में कहा। किसी और को क्या पड़ी है कि वो उस गरीब लड़के को कत्ल करे? पीटर ने लोगों से ये कहकर जबरदस्त गलती की थी कि तुम्हारा पति जानबूझकर वॉल्टर को अपनी कार से कुचलना चाहता था। हेजल ने दोनों हाथों से अपना सर छुपा लिया और सिसकियां भरने लगी। एलिजाबेथ, वॉल्टर ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हेजल के लिए पति की मौत का सदमा कुछ कम था जो अब तुमने? हेजल ने भी खुद पर काबू पाते हुए कहा, मैडम आपको मरे हुए लोगों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनकी रूह को तकलीफ होती है। जहां तक पीटर के कातिल का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक पुलिस इस वक्त एक ऐसी महिला की तलाश में है जो नारंगी रंग का हैट और सफेद कोट पहने हुए थी। पुलिस आज सुबह ऑफिस भी आई थी। उसे सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कल दोपहर को पीटर एक महिला के साथ एक मेडिकल स्टोर पर बैठा कोका कोला पी रहा था। दोनों आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। फिर कल रात ही पीटर को कत्ल कर दिया गया। पीटर अक्सर उस मेडिकल स्टोर पर सॉफ्ट ड्रिंक पीने जाता था, इसलिए स्टोर का मालिक उसे अच्छी तरह से पहचानता था। उसे पीटर के साथ उस मालदार और बेहद खूबसूरत औरत को देखकर बहुत आश्चर्य था। इसके अलावा पुलिस को पीटर की जेब से एक कागज भी मिला है जिस पर उस जगह का पता लिखा हुआ है जहां कल पीटर की लाश पाई गई है। हेजल ने अखबार खोलकर मिस्टर वॉल्टर की तरफ पढ़ा दिया। देखिए मिस्टर वॉल्टर, अखबार में उस कागज की तस्वीर भी छपी है। लोगों ने से पुलिस ने गुजारिश की है उसकी कागज पर दिख रहे सुनहरे मोनोग्राम को पहचान कर उसे सूचित करें। मिस्टर वॉल्टर ने अखबार पढ़ने के लिए आंखों पर चश्मा लगाया। एलिजाबेथ ने कॉफी की प्याली नाश्ते की ट्रॉली पर रख दी। उसने फुर्ती से ट्रॉली को पैरों से खिसकाया और तेजी से बेडरूम से भाग निकली। एलिजाबेथ को अब अपनी बेवकूफी पर गहरा अफसोस हो रहा था। उसने पीटर को पता बताने के लिए अपना लेटर पैड क्यों इस्तेमाल किया? ये पैड खुद मिस्टर वॉल्टर ने उसे छपवा कर दिए थे, इसलिए मुमकिन था कि वो अखबार देखते ही उसमें छपा मोनोग्राम और उसकी लिखावट को पहचान लें। मिस्टर वॉल्टर आंखें फाड़े हैरत से अखबार देख रहे थे। एलिजाबेथ, अचानक मिस्टर वॉल्टर ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने पीटर को उस जगह क्यों भेजा था? मुझे बताओ कि इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या तुम उससे भी इश्क लड़ा रही थी? ओह गॉड, शादी के बाद तो तुमने तौबा कर ली थी ना? मुझे नहीं वॉल्टर, नहीं, एलिजाबेथ ने चीख कर उसकी बात काटते हुए कहा और वापस आकर बिस्तर के कोने में बैठ गई। एलिजाबेथ का दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या वो वॉल्टर को सब कुछ सच सच बता दे? लेकिन सच्चाई का पता चलते ही वॉल्टर उसे तलाक दे देगा, फिर वो कहां जाएगी? हेजल हालात की इस करवट से हक्का बक्का सी रह गई थी। वो नजरें नीचे किए अपने हाथ देख रही थी। मिस्टर वॉल्टर ने उससे कहा, हेजल, बेहतर होगा कि तुम अपने घर चली जाओ। मैं नहीं समझता कि तुम्हें मेरे घरेलू मामलात से कोई दिलचस्पी हो सकती है। तुम फाइल छोड़ जाओ, मैं ऑफिस के कागजात कल देख लूंगा। हेजल दबी जुबान से शुक्रिया अदा करके जाने लगी। ठहर जाओ हेजल, अचानक एलिजाबेथ ने दबी जुबान से कहा, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ मुझे उम्मीद है कि उससे तुम्हें भी दिलचस्पी होगी। एलिजाबेथ ने फैसला कर लिया था कि उसे तमाम हालात पूरी सच्चाई के साथ बयां कर देने चाहिए, वरना रेमंड की मौत के बाद मौजूदा हालात में पीटर के कत्ल का सारा इल्ज़ाम उसके सर आ सकता है। जेल की काल कोठरी और फांसी के फंदे से तलाक कहीं ज्यादा बेहतर है। उसका पति सब कुछ जानने के बाद उसे तलाक दे देगा, लेकिन जान तो बच जाएगी। अभी वो जवान और खूबसूरत है, वो आसानी से किसी दूसरे मालदार मर्द को फंसा लेगी। वाह, वो कोई बूढ़ा ही क्यों ना हो। हेजल, एलिजाबेथ ने कहा, तुम्हारा पति रेमंड मेरा प्रेमी था। वो कई माह पहले यहाँ इस घर में आया था, फिर उसने मुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। मैंने बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन एक दिन एक कमज़ोर पल में वो मुझ पर हावी हो गया। कल उसने मुझे फ़ोन पर धमकी दी थी कि अगर मैंने पीटर से मिलकर उसे उससे मुलाकात करने पर तैयार न किया तो वो मेरी बेवफाई के बारे में मेरे पति को सब कुछ बता देगा। यही वजह है कि मैं ना चाहते हुए भी पीटर से मिली थी। मेरा ख्याल था कि तुम्हारा पति पीटर से इसलिए मिलना चाहता था ताकि वो वॉल्टर को कुचलने के मामले में उसे लालच वगैरह देकर उसे जुबान बंद रखने पर राजी कर सके। अगर मुझे ये गुमान भी होता कि उसका इरादा पीटर को कत्ल करके खामोश करने का है तो मैं हरगिज़। तुम झूठ बोल रही हो एलिजाबेथ, मिस्टर वॉल्टर ने अपनी बीवी की बात काटते हुए तेज आवाज में कहा। तुम मिस्टर रेमंड की हादसे में मौत का फायदा उठाना चाहती हो। चूंकि अब मिस्टर रेमंड तुम्हारी किसी भी बात को गलत नहीं ठहरा सकते, इसलिए तुम बेझिझक झूठ बोल रही हो। मुझे विश्वास है कि रेमंड का पीटर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुझे यह भी यकीन है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी मिस्टर रेमंड को देखा भी नहीं होगा। मैं साबित कर सकती हूं कि रेमंड मेरा बॉयफ्रेंड था और हम कई माह से। एलिजाबेथ ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसे पहली बार हालात की संगीनी का एहसास हुआ। उसने अपने प्रेमी से गुप्त तौर पर मिलने के लिए जो एहतियाती तरीके अपनाए थे, उनकी वजह से तो अब वो खुद भी ये साबित नहीं कर सकती थी कि उसके रेमंड से ताल्लुकात थे। उसे ये भी याद हो आया था उसने एहतियात के तौर पर अपनी उस नौकरानी को भी निकाल दिया था जिसने एक बार रेमंड को घर में आते हुए देख लिया था। वो न जाने अब कहाँ नौकरी कर रही होगी। वो नौकरानी गवाही दे सकती थी कि उसने मिस्टर रेमंड को एक बार गुप्त तौर पर यहाँ आते देखा था। गोपनीय मुलाकातों के लिए रेमंड ने किराए पर कमरा भी अपने नाम से लिया था। किराया भी वो अपने हाथ से ही अदा करता था। इन 4 महीनों में उसने इस कदर एहतियात बरती थी कि न तो उसे किसी ने उस गुप्त कमरे में जाते हुए और न ही निकलते हुए देखा था। वो किसी भी तरह से ये साबित नहीं कर सकती थी कि रेमंड से उसके रिश्ते थे, यानी कि वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी गवाही 2 लोग दे सकते थे और वो दोनों ही कल रात इस दुनिया से विदा हो गए। पीटर को रेमंड ने कत्ल कर दिया और खुद हादसे में मारा गया। अचानक उसके दिमाग में एक और विचार पौंधा। मुमकिन है कि हेजल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। हेजल, एलिजाबेथ ने अपने पति की सेक्रेटरी को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम बताओ, तुम अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी। मैं जो कुछ कह रही हूं क्या वो सच नहीं है? क्या तुम्हारा पति तुमसे बेवफाई नहीं कर रहा था? हेजल कुछ देर खामोश रही। इस दौरान उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए और फिर उसका चेहरा सपाट हो गया। नहीं मैडम, हेजल ने जवाब दिया, मेरा पति मुझसे बेवफाई नहीं कर सकता था। उसकी फितरत में बेवफाई थी ही नहीं। उसने पीटर को कत्ल भी नहीं किया था। जिस जगह पीटर की लाश पाई गई है उस जगह से 60 मील दूर मेरे पति के साथ हादसा हुआ है। इन दोनों हादसों के बीच 1 घंटे से भी कम का अंतराल है। पीटर की मौत रात 8 बजे हुई है। मेरे पति का हादसा रात 8:55 पर हुआ है। इसलिए रेमंड किसी भी तरह से पीटर को कत्ल कर ही नहीं सकता था। जिस वक्त उस लड़के को कत्ल किया गया, रेमंड घटनास्थल से बहुत दूर हाईवे पर अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। लेकिन रेमंड तो बहुत तेज गाड़ी चलाता था ना? हेजल, तुमने मुझे खुद बताया था कि वो बिल्कुल दीवानों की तरह गाड़ी चलाता है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है मैडम, हेजल ने मासूमियत से कहा। मेरा पति हाईवे पर कभी भी 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाता था। वो इस मामले में बहुत सतर्क रहता था। क्या तुम कसम खाने के लिए तैयार हो? एलिजाबेथ ने चीखते हुए कहा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो, हेजल ने सर झुकाए हुए जवाब दिया। एलिजाबेथ हिस्टीरिया की मरीज की तरह चीखती हुई दीवारों पर घूंसे मारने लगी। गाथा में आप सुन रहे थे एरोनिका पार्कर जोन्स की लिखी कहानी साजिशबाज औरत। आपने सुना इस कहानी का 5वां और अंतिम भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।